मोक्षमार्गसिनीतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सप्तम अध्याय का अंतिम प्रकरण अत्राहा, यहाँ कहते हैं उक्तम भवता तीर्थर करत्व कारण कर्माश्रव निर्देशे शक्तितस्त्याग तपसी इति। आपने तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का निर्देश करते हुए शक्तितस्त्याग तपसी ये कहा था। पुनश्चोक्तम शीड विधान अतिथि संविभाग इति। फिर आपने जो सात शील बतलाए, पांच अणुव्रत थे और फिर सात शील थे, और सात शील में गुणव्रत शिक्षा व्रत आते हैं, तो वहां पर आपने फिर से अतिथि संविभाग व्रत कहा। तस्य दानस्य लक्षण वा निर्जिनातम, तो वो जो दान आप कहना चाह रहे हैं अतिथियों के लिए उसका लक्षण यहाँ तक तत्वार्थ सूत्र में हमारी जानकारी में नहीं है। तद उच्चताम इत्यत आह, तो वो लक्षण कहा जाए इसलिए यहाँ से आचार्य सूत्र कह रहे हैं अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम। स्वपरोपकारो अनुग्रह, अपनी और दूसरों की भलाई के लिए। अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। अपनी भलाई क्या हो रही है दान में? सोपकार पुण्य संचय, अपना उपकार जो होता है वो पुण्य का संचय रूप होता है। परोपकार सम्यक ज्ञानादि वृद्धि, और उनका उपकार क्या होता है साधु का? आप आहार देते हैं तो उनको क्या लाभ होता है? तो आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान आदिक में वृद्धि होती है उनके, वो आहार लेने के बाद में अपने ज्ञान आदिक की वृद्धि करते हैं। स्वशब्द धन पर्याय वचन, स्वशब्द जो होता है वो धन का पर्यायवाची शब्द भी होता है, तो अपना धन इसमें लगाना दान है। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्ग त्यागो दानम वेदितव्य, अनुग्रह के लिए अपने दूसरों के उपकार के लिए धन का अतिसर्ग अर्थात त्याग करना दान है ऐसा जान लेना। इसके बाद अत्राह, अब कहते हैं यहां पर उक्तन दानम, दान तो आपने बताया, तत्किम अवशिष्ट फलम आहोस्विद अस्ति कश्चित प्रति विशेष इत्यत आह। वो जो दान होता है तो हर दान का एक जैसा फल होता है या फिर अंतर होता है फलों में? तो आचार्य बतलाते हैं विधि द्रव्य दात्रिपात्र विशेषात तत् विशेष। विधि विशेषात, द्रव्य विशेषात, दात्री विशेषात, पात्र विशेषात, विशेष का अर्थ यहां पर भेद है। और तद विशेष है यानी दान का जो परिणाम होता है उसमें भी भेद पड़ जाता है, पुण्य संचय में भी भेद पड़ जाता है। तो विधि प्रतिग्रहादिक क्रमो विधि ही, पड़गानादिक का जो क्रम होता है उसको विधि कहते हैं। विशेषो गुणकृत, और उसमें जो विशेष अर्थात भेद है वो गुणकृत है, गणनाकृत नहीं है। विधि किसको कहते हैं? नवोपचार को विधि कहते हैं, नव पुण्य क्रियाओं को विधि कहते हैं। तो वो गुणकृत भेद है उसमें, मतलब जो पड़गाहन नमस्कार आदि जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें जो सामने पात्र हैं उनकी यथा योग्य विनय के साथ ही करेंगे वो क्रिया। नवोपचार विधि एक मुनिराज की भी होती है और एक आचार्य की भी होती है, लेकिन उस विधि के काल में जो दातार हैं उनके भाव एक जैसे नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है? क्रिया एक जैसी हो रही है लेकिन विनय का जो भाव है या फिर भक्ति का जो भाव है, आचार्य के प्रति आचार्य भक्ति होती है और मुनि के प्रति साधु जैसी भक्ति होती है, साधु के प्रति जो भक्ति होती है, वो बहुत अंतर है। और ये वो सब लोग जानते हैं जिन्होंने आचार्य का पड़गान किया और मुनियों का पड़गान किया। नवविधि तो एक है भाई, वो बोला ना भाई, नवोपचार विधि तो वही है, विशेषो गुणकृत। तस्य प्रत्येकम अभिसंबंध क्रियते। अब वो सबके साथ इसका संबंध जोड़ना, विधि के साथ भी, द्रव्य के साथ भी, दाता के साथ और पात्र के साथ भी। विधि विशेषो, द्रव्य विशेषो, दात्र विशेषो, पात्र विशेष इति। तत्र विधि विशेष, विधि में भेद कैसा होता है? प्रतिग्रहादिश्वादर रानादर कृतो भेद, आदर और अनादर से भेद पड़ जाता है। अनादर यानी ईषत आदर अथवा अविनय अगर ले लेंगे तो फिर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पूरा आदर और थोड़ा कम आदर, इतना अंतर तो हो सकता है। तप स्वाध्याय परिवृद्धि हेतुत्वादिर द्रव्य विशेष। द्रव्य में अंतर क्या है? कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं कि जिनके सेवन के बाद में स्वाध्याय और तपस्या आदि में वृद्धि हो जाती है साधु की। कुछ ऐसे हैं कि जिनसे काम चलता है, भूख शांत हो जाती है और फिर वो अपनी क्रियाएं सामान्य रूप से करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जिससे विशेष वृद्धि होती है उसमें। अनसूया विषादादि, अनसूया विषादादिर दात्र विशेष। ईर्ष्या अधिक न करना, विषाद न करना आदि जो सात गुण होते हैं वो दाता की विशेषता है। फिर मोक्ष कारण गुण संयोग पात्र विशेष। मोक्ष में कारणभूत गुणों का जो संयोग होता है उसको पात्र विशेष कहते हैं। तो उसमें उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के अनुसार अंतर पड़ेगा दान के फल में। उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि मिलती है, अगर कोई मिथ्या दृष्टि देता है तो। मध्यम को देता है तो मध्यम भोग भूमि, और जघन्य को देता है जघन्य भोग भूमि मिलती है। अनुमोदना से भी वही होता है। ततश्च पुण्य फल विशेष क्षत्यादि विशेषात बीज फल विशेषवत्। और इन कारणों से पुण्य के फल में भेद पड़ जाता है। जैसे धरती अलग अलग हो तो काली मिट्टी में कोई बीज डालो तो अलग तरह से उसका फल मिलता है, और मुरम में डालो तो अलग तरह से मिलता है, और दूसरे प्रकार की साधारण मिट्टी में डालो तो अलग प्रकार से फल मिलता है। ये अंतर पड़ता है। अब इसको अपन यहाँ तत्वार्थ सूत्र में तो अपन ने देखा है अन्य ग्रंथों में भी अपन देखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि विधि शब्द आया तो विधि शब्द का अर्थ नवोपचार विधि है, और ये नवोपचार विधि किनकी होती है किनकी नहीं होती है इस पर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि रत्नकांड में भी ये चर्चा हुई है, यहाँ तत्वार्थ सूत्र में भी ये चर्चा अपेक्षित है। बारह व्रतों का वर्णन जहां जहां आया है वहां सर्वत्र देखा जा सकता है इसको। उदाहरण के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी ग्रंथ सामने है, उसमें अपन देखते हैं। बिल्कुल यही शब्द जो सर्वार्थ सिद्धि में है, आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने भी दिए हुए हैं। विधिना दा त्रिगुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वश्यमतिथये भागः। विधि पूर्वक दाता के गुणों से युक्त श्रावक के द्वारा द्रव्य विशेषस्य जो विशेष सामग्री है भोजन की, वह जात रूपाय अतिथये दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले अतिथि के लिए जो सामग्री उसके यहाँ भोजन सामग्री बनी है उसका भाग अवश्यम कर्तव्य है, विभाजन अवश्य कर लेना चाहिए। क्यों? स्वपर अनुग्रह हेतु, उसमें अपना भी उपकार होगा उनका भी उपकार होगा। अब सबसे पहले विधि क्या है वो बताते हैं। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामंच वाक्कायमन शुद्धि रेशन शुद्धिश्च विधिमाहु। पड़गान उच्चासन पाद प्रक्षालन अर्चन प्रणाम वचन काय और मन शुद्धि फिर एषणा शुद्धि, इन नौ को इकट्ठा करके विधि माहु विधि कहते हैं, नौ को मिला करके विधि कहते हैं। इसके बाद दाता की बात कर रहे हैं। ऐहिक फलान अपेक्षा शांतिर्निष्कपटतान सूयत्वम अविषादित्वम उदित्वी निरहंकारित्वम इति हिदा त्रिगुणा। जिसको सांसारिक सुख की वांछा नहीं है वो दान इसलिए नहीं दे रहा है कि मुझे संसार में बढ़िया से बढ़िया सुख मिल जाए, उस लोभ से दान न करने वाला, एक बात। फिर सात गुणों की बात कर रहे, दूसरी बात है शांति क्षमा भाव है उसके अंदर, तीसरी बात है निष्कपटता कपट नहीं है, चौथी बात है अनसूयत्वम ईर्ष्या नहीं है, पांचवी बात है अविषादित्व, वो दातार दुखी ना हो, अविषादीपना यानी दुखी राम न हो आहार देने वाला, और मुदित्वे और उसमें मुदितपना हर्षितपना। और अंतिम है
निरहंकारी हो, घमंडी न हो। फिर भोजन कैसा दिया जाता है वो बता रहे हैं, राग द्वेष संयम मद दुख भयादिकम नियत कुरुते द्रव्यं तदेव देयम् सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम्। दो बातें बताइए कि जो चीज आप भोजन में दे रहे हैं साधु को उससे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बातें बता रहे हैं। पहले निषेधात्मक कह रहे हैं कि राग उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न ना हो। कंकड़ वाले चावल खिला दो कि द्वेष उत्पन्न हो जाए, भात के अंदर अगर रेत के कण आ जाए, कंकड़ आ जाए तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो राग द्वेष असंयम उत्पन्न ना हो। मद उत्पन्न ना हो, नशा उत्पन्न ना हो, दुख उत्पन्न ना हो। इतना ज्यादा मिर्ची डाल दी कि आधे घंटे तक मुंह जल रहा है, वो दुख उत्पन्न हो। भयादिकम घबराहट ना हो जाए, आहार लेने के बाद एकदम बेचैनी हो जाती, घबराहट हो जाती है, ऐसा भोजन नहीं देना। कैसा देना है? बोले सुतप स्वाध्याय वृद्धि करो, तपस्या और स्वाध्याय को बढ़ाने वाला भोजन देना। अब विधि द्रव्य और दाता तीन की बात हुई, चौथा क्या है? पात्र। तो पात्र की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं पात्रं त्रिभेद मुक्तं संयोगो मोक्ष कारण गुणानां अविरत सम्यक दृष्टिर अविरत सम्यक दृष्टिर विरता विरतश्च सकल विरतश्च। पात्रं त्रिभेद मुक्तं संयोग मोक्ष कारण गुणानां अविरत सम्यक दृष्टिर विरता विरतश्च सकल विरतश्च। पात्र के तीन भेद हैं। मोक्ष में कारणभूत जो गुण होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उनका जिस जीव में संयोग पाया जाता है उसको पात्र कहते हैं। उसके तीन भेद हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, विरता विरत यानी अनुवृत्ति और सकल विरत महावृत्ति। ऐसे तीन भेद हैं। अब इसी को अपन वसुनंदी श्रावकाचार में भी देखेंगे, पर उससे पूर्व कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में देख लेते हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में अथ तृतीय शिक्षा व्रतम अतिथि संविभाग आख्यम गाथा पंचकी नाह, पांच गाथाओं के माध्यम से
अतिथि संविभाग का वर्णन करते हैं। तिविहे पत्तम मिसया सद्धाई गुणे संजुदो नाणी दानम जो दे दिशयम नव दान विही संजुतो सिखावयंच तदियम तस्सहवे सब सिद्धिसो खयर दानम चो विहम पिय सब वेदानान सारयरम। तिवेहे पत्तम्मी, तीन प्रकार के पात्र के प्रति, सया जो नाणी जो ज्ञानी जीव तीन पात्रों में सदा सद्धाई गुणे ही संजुदो श्रद्धादि जो सात गुण होते हैं श्रावक के उनसे संयुत होकर स्वयं दानम दे दी, स्वयं दान देता है। कैसे देता है? नव दान भी संयुक्त, नौ दान विधियों से संयुक्त होकर के दान देता है तीनों पात्रों के लिए। तो सिखा वयम च तदियम तस्सहवे, उसके पास तीसरा शिक्षा व्रत कहलाता है। और सब सिद्धि सोखिम, सर्व सिद्धियों को और सुख को प्रदान करने वाला। और ये चतुर्विध दान जो है, आहार औषध उपकरण और आवास, ये सर्व दानों में सारभूत है। मैं तो गोदान कन्यादान अगर बहुत सारे दान होते हैं, पर ये चार दान सबसे सारभूत है। फिर इसमें सब वर्णन किया पूरे, नौ पुण्य का, सात गुणों का, सब का विस्तार से टीका में वर्णन किया। ये दान अंततः मुक्ति भी प्रदान करता है, ऐसा लिखा। गोदान, स्वर्णदान, गजदान, अश्वदान, भूमिदान, कन्यादान, दासीदान, तिलदान, ऐसे बहुत सारे दान होते हैं जो अन्य मतों में भी प्रसिद्ध है। त्रिविधे पात्रे महाव्रत सम्यक् विराजितम उत्तमम पात्रम, महाव्रत और सम्यक् से विराजमान पात्र उत्तम पात्र है। श्रावक व्रत सम्यक् तो पवित्रम मध्यम पात्रम, श्रावक के व्रत और सम्यक् से जो पवित्र है वो मध्यम पात्र है। सम्यक् तो एक ही निर्मलीकृतम जगन्य पात्रम, और जिसके पास अकेला निर्मल सम्यक् है या जो सम्यक् से निर्मल है वो जगन्य पात्र है। ऐसे तीन पात्रों के लिए दान देता है। कैसा होकर? तो बोले सात गुणों से युक्त होकर के। इति सप्त गुणे सहित तो दाता भवति, ऐसे सात गुणों से सहित जो होते हैं वो दाता कहलाते हैं। और कैसे होते हैं? दाता ज्ञानी, पात्रा पात्र, देया देय, धर्मा धर्म, तत्वा तत्वादि विचारज्ञ। ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर शब्द दिया है, जो पात्र और अपात्र को पहचान लेता है, जो देने योग्य और न देने योग्य वस्तुओं को जानता है, जो पुण्य पाप को समझता है, और जो तत्व और अतत्व के विचार में कुशल है वह ज्ञानी है। वो कैसा है? नव दान विधि भी संयुक्त, नौ प्रकार की दान विधियों से संयुक्त है। नौ प्रकार पुण्योपार्जन विधि भी सहित, नौ प्रकार की पुण्योपार्जन विधियों से सहित है। पड़िगह मुच्छाणम पादोदयम अक्षणम चपणमंच मणवयण काय शुद्धि ऐसण शुद्धि नव विहम पुण्यम। पड़गान उच्चासन पाद प्रक्षालन अर्चना प्रणाम मन वचन काय शुद्धि और ऐसण शुद्धि ये नौ प्रकार का पुण्य है। इसी को अभी अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में विधि कहा था, इसी को यहाँ नौ नौविध पुण्य कह रहे हैं। पत्तम निज गयगा घर दारे दठूनन्नत्वा विमग्गित्ता पड़िगणंकायवम नमोत्थुठाहुति भणिदून। ये वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथाएं हैं जिसमें लिखा है कि पात्र को अपने घर के द्वार पर देखकर अथवा अन्नत्वा या कहीं और से भी विमग्गित्ता ढूंढ करके पड़िगणंकायवम पड़गान करने योग्य है। अब फिर ये जो गाथा है इसमें प्रश्न करेगा कोई, किसी न किसी के मन में प्रश्न होगा कि अन्य कहीं से खोजकर पड़गान करने की बात समझ में नहीं आई, अपने द्वार पर तो ठीक है लेकिन अन्यत्र कैसे बनेगा। तो उसका समाधान ये है कि कभी कभी घर जो होते हैं वो ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर पड़गान करना मुश्किल है, तो पड़गान दूर जाकर के करना पड़ता है। मान लो कोई फर्स्ट फ्लोर पर रहता है या सेकंड फ्लोर पर रहता है तो वो ऊपर से बोलेगा कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ, कैसे कैसे संभव है? वो नीचे आना पड़ेगा ना उसको धरती पे। तो ऐसे अन्य स्थान पर भी जा करके विमग्गित्ता खोज करके क्या करना है, पड़िगहणम कायवन पड़गान करना, नमोत्थु नमोत्थु ठाहुत्ति ठाहु ठाहु का अर्थ होता है ठहरो ठहरो, तिष्ठ बोलते हैं ना। स्था धातु के लोट लकार में द्विवचन क्या बनता है? तिष्ठ अन्य पुरुष में तो तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु ऐसे रूप बनता है, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा रूप? तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, बिल्कुल ठीक है। तो मान लो आप तीन माताजियों को पड़गा रहे हैं ना तो फिर तिष्ठत बोलना होगा, दो को पड़गा रहे हैं तो फिर तिष्ठतम बोलेंगे, एक को पड़गा रहे तो तिष्ठ बोलेंगे। ये भी बातें हैं मतलब ध्यान में रखने की। भणिदूण, हाँ जिनको नहीं आती संस्कृत तो वो अपनी भाषा में बोले जो समझ में आए उनको। नेदूणम नेगेहम अपने घर लाकर निर्वज्जाण वह उच्चठाणमी ठविदूण तदो चलनाण न धोवणम होदिकायव्यम ठविदूण तदो चलना न धोवणम होयिकावयव्यम। अपने घर ला करके निर्दोष अनुपथ यानी उनके मार्ग के अनुसार उच्च ठाणम में ऊंचे स्थान पर बैठा लेना है उनको। अब किसी के घर में बहुत ऊंचा स्थान कोई बड़ा भारी कुर्सी या सिंहासन जैसा हो तो उस पर नहीं बैठा लेना, उनके वो नियम पथ अपने पथ के अनुसार उनके मार्ग के अनुसार उनके लिए उच्चासन देना है और ठविदूण उनको स्थापित करके वहां विराजमान करके तदो चलना धोवन हुई कायव, फिर उनके चरणों का धोना होता है प्रक्षालन कहते हैं उसको। अभी अभी हमें जानकारी मिली थी कि आचार्य वीर सागर महाराज श्री पूरी नवोपचार वेदी से ही आहार लेते थे। क्या है कि कुछ ऐसा साधुओं को करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि श्रावक लोग सीख सके, कुछ ऐसी चीजें उनको दिखती है कि इसमें श्रावक लोग थोड़े प्रमादी हो रहे हैं तो फिर वो
ऐसी प्रवृत्ति करेंगे कि वो प्रमाद उनका दूर हो जाए। तो ऐसा एक ऐसी जानकारी आई थी आचार्य वीर सागर महाराज पाद प्रक्षालन करवा कर ही आहार लेते थे। और पाद प्रक्षालन का अर्थ ये था कि ऐसे धारा करना पाद प्रक्षालन नहीं होता है, पाद प्रक्षालन का अर्थ होता है पैरों को धोना। धारा करने में और धोने में अंतर है या नहीं है ये बताओ आप, अंतर है ना। तो फिर यहां पर ये लिखा है चलनान धोवणम होदि कादवम, धोना चरणों को धोना कर्तव्य होता है नवोपचार विधि में। फिर पादोदयम पवित्रम सिरम्मि कादुण चणम कुज्जा, और उसके बाद वो जो पवित्र गंधोदक है पैरों का उसको सिरम्मि कादुण पवित्रम लिखा है, शरणों के गंधोदक को पवित्र लिखा है उसको सिरम्मि कादुण अपने मस्तक पर लगाकर, फिर अचणम कुज्जा अर्चना करके, फिर गंधक है कैसे अर्चना करके, गंध अक्षत कुसुम नैवेद्य दीप धूप और फलों से। बिल्कुल क्रम से दिए हुए हैं सारे द्रव्य। जल से अर्चना तो कर दी पाद प्रक्षालन करके, और बाकी सात द्रव्यों के नाम अलग से लिखे हैं। गंध, गंध जो है गंध का अनुलेपन होता है, गंध में ऐसे पानी मिला करके ऐसे नहीं डाला जाता, गंध को गंध का अनुलेपन किया जाता है, उसको गंध को ऐसे लेकर के चर्चन करते हैं पैरों में लगाते हैं। और अगर नहीं लगवाते तो फिर आपने जो स्थापना की है ठोने में, ठोने में आप आह्वान करते हैं ना अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहित, तो उसमें जो दाने हैं उसमें आपने आह्वान किया है और स्थापना की है तो उन पर आप लगा सकते हैं चरण मान करके, उनके चरण वहां पर चरणों पर लगा रहे हैं ऐसी भावना करके आप वहां पर भी लगा सकते हैं। वो अभी यहां पर पता नहीं ये प्रक्रिया यहां पर चलन में नहीं है ना, वो जो जिसको पीठ बोलते हैं पीठ, और देखिए और हम बताते हैं आपको अष्ट मंगल द्रव्यों में एक द्रव्य ये भी होता है, और उस पर भगवान का आह्वान करते हैं या गुरु का आह्वान करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। मम सन्नी तो कैसे करोगे आप थाली में बनाते हो, थाली में वो सब बनाते हो, वास्तव में देखा जाए तो एक पीठ होता है, थोड़ा ऊंचा रहता है वो, क्योंकि उनको नीचे स्थान पर नहीं रखेंगे। नहीं तो फिर और सरल तरीका यह है कि आप जब उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं तो साथ में चंदन का भी वो कर दो प्रक्षालन के समय, जल और गंध दोनों हो जाएंगे, उसके बाद मार्जन कर लेंगे। मार्जन तो करना ही होता है, सम्मार्जन तो आया ही है। नवण ओवलेवण सम्मज्जन छुहावण, जय धवला में ये पंक्ति आती है ना, नवण फिर उपले भगवान के लिए आती है, पर यहां पर भी आप देखेंगे जो यहाँ गुरु की जो विधि है उसमें और भगवान की जो विधि है उसमें काफी समानता है। चरण प्रक्षालन के बिना गुरु की पूजा नहीं होती, वहां अभिषेक के बिना भगवान की पूजा नहीं होती, और इन द्रव्यों के बिना भगवान की पूजा नहीं होती, इन द्रव्यों के बिना गुरु की पूजा नहीं होती। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। फिर अक्षत, फिर कुसुम। अब गंध जो है वो एकदम पतला पानी जैसा नहीं होती है, वो तो गंधोपलेपन होता है ना, उपटन होता है,
लेप लग जाए ऐसा होता है। फिर अक्षत, अक्षत का अर्थ तो पता ही है सबको, जो टूटा हुआ नहीं है ऐसा चावल अक्षत कहलाता है, अखंड चावल। फिर कुसुम, कुसुम का अर्थ पुष्प है और पुष्प का अर्थ फूल है। और नैवेद्य, दीप और धूप और फल, इनसे पूजा करना, इनसे अर्चना करना है गुरु की। अब दीप ऐसा ना हो बुझा हुआ दीप, अब कभी ऐसा हो सकता है कि कोई साधु है उनके मन में विकल्प हो जाए कि ये तो दीपक जल रहा है तो यहाँ तो अग्नि है, और अग्नि है तो फिर ये तो जीवों की विराधना है तो फिर ये तो उचित नहीं है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द्रव्यों से ही अर्चना वो गृहस्थ करते हैं, और गृहस्थ अगर दीपक नहीं भी जलाएंगे तो बाकी जो द्रव्य हैं क्या वो बाकी द्रव्य जीवों को बाधा पहुंचाए बिना आए हैं थाली में? पूजा की थाली में जो बाकी द्रव्य हैं उन द्रव्यों में जीवों को बाधा नहीं पहुंची क्या? अब कोई कहेगा कि हाँ पहले पहुंची है, अभी तो नहीं पहुंच रही है, दीपक में तो अभी पहुंच रही है। तो अगर अहिंसा काल सापेक्ष है, पहले अगर किसी जीव को बाधा पहुंचा दो तो माफ, और अभी अगर बाधा पहुंचा दे तो फिर नहीं चलेगा। अगर ऐसी अहिंसा चलती है तो फिर यह अहिंसा कहीं शास्त्रों में आई हो तो उसका संदर्भ देना आवश्यक है। जब ये गृहस्थों के लिए आगम का आदेश है कि आप इस तरीके से अपने व्रत का पालन करें, तो फिर उनके व्रत का वो पालन कर रहे हैं आगम के आदेश से, तो तीसरा कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार कैसे रख सकता है? वो अपने ढंग से कर रहा है, अपने आगम से कर रहा है। और ये गाथा जिनको पढ़ना है वो अपनी आंखों से पढ़ ले। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पृष्ठ 263 पर है, और उसमें भी वो गाथा जो है वो भी वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ की गाथा है। इसके बाद क्या करना है फलों के बाद? तो अभी वर्तमान में अर्घ की एक पद्धति चलती है, लेकिन इसमें लिखा है पुप्पंजलिं खिवित्ता पयपुर्दो, गुरु के चरणों के समक्ष पुष्पांजलि का क्षेपण करना है। ऐसे माने अंजलि में फूल लेकर के ऐसे उनके चरणों के सामने क्षेपण करने का अर्थ होता है डालना है। वंदनम तजो तदो कुज्जा, उसके बाद वंदना करनी है नमोस्तु। और चयूण अट्ट रुद्धम मन शुद्धि होदि कायव्वा, और मन से आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ देना है तो ये मन शुद्धि हो जाएगी। फिर वचन शुद्धि कैसे होगी? निठुर कक्कस वयण, निठुर कक्कस वयणाई वज्जनम सावयाण वचि शुद्धि। निष्ठुर यानी कठोर और कर्कश यानी अप्रिय वचनों आदि का त्याग करके जो मधुर वचन बोले जाते हैं वो वचन शुद्धि कहलाती है। सवत्त संवुडंग सहोदित काय शुद्धि, और काय शुद्धि उसको कहते हैं कि अपने शरीर की प्रवृत्ति, ये बहुत अलग वर्णन है, ये ध्यान से सुनने की बात है। अपन जो सोचते हैं ना कि नहा धोकर आ गए वो काय शुद्धि हो गई, यहां आचार्य कुछ दूसरी बात कर रहे हैं कि शरीर से ऐसी प्रवृत्ति करनी है आपको कि जिससे अभिनय भी न हो, जीवों को बाधा भी न हो, और अन्य भी कोई ऐसी घटना न हो। इस तरीके से शरीर को संयत रखना सावधानी से शारीरिक प्रवृत्ति करना काय शुद्धि है। फिर आप कहोगे फिर वो जो नहाना धोना वगैरह जो है वो शुद्धि आहार दान में नहीं है क्या? तो वो शुद्धि ऐषण शुद्धि में आती है। कैसे? चौदसमल परिशुद्धम जम दानम सोहिदूण जयनाई संजद जनस दिज्जदी साणीया ऐषणा शुद्धि। 14 मलों से रहित जो दान शोध कर सावधानी पूर्वक संयत जन के लिए दिया जाता है उसको ऐषणा शुद्धि जानो। स्नान तो करना ही करना है, उसके बिना तो आप इतना शोध करके इतनी शुद्धि के साथ दे रहे हो तो वो कैसे बनेगी शुद्धि? तो काय शुद्धि में अपन इसको भी ले लेते हैं। वी शब्द आया है अपि, तो अपि का मतलब आप नहा धोकर तो आए हो, साफ कपड़े पहनकर तो आए हो, लेकिन अब आपको काय की प्रवृत्ति भी अच्छे से करना है, वो आपकी काय शुद्धि होगी, तब जाकर काय शुद्धि पूरी होगी, ऐसा इसमें से अभिप्राय ग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए अंतिम पंक्ति में फिर वो उस बात का उपसंहार कर रहे हैं, इति इस प्रकार सप्तदात्रि गुणैर 7 दाताओं के गुणों के साथ 9 विध पुण्योपार्जन विधिभिश्च और 9 प्रकार के पुण्योपार्जन विधियों के साथ कृत्वा त्रिविध पात्रेभ्य 3 पात्रों के लिए अशन पान खाद्य स्वाद्य चतुर्विधन दानम दातव्यम। 4 प्रकार का दान, 4 प्रकार के भोजन, उनको आहार दान में देना। अब कोई कहे, कोई साधु अगर नहीं ले रहे हैं कोई चीज, किसी चीज का त्याग है तो मत देना। आप कहो कि भाई यहां लिखा है देना, अब महाराज आपको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि शास्त्र में लिखा है हम लोगों के लिए, तो उसमें फिर विवेक की बात है कि जो चीज त्याग है वो चीज मत दीजिए, क्योंकि उनका भी तप है ना, तप में वृद्धि करने वाली वस्तु देना आपको पहले ही बतला चुके हैं, तो फिर अब आप ऐसी वस्तु मत दीजिए जो तप को हानि पहुंचाए। उनने त्याग कर दिया तो वो उनका तप हो गया, रस परित्याग, तो फिर वो चीज मत दो। अब यहां ये भी प्रश्न हो सकता है कि फिर कोई साधु ने अगर दीपक का त्याग किया हो तो इसका उत्तर है कि जो कुछ भी मोक्ष मार्ग में किया जाता है उसके विषय में बार बार आचार्यों का एक ही कथन आता है, आर्षा विरोधेन, ज्ञान के जगत में और क्रिया के जगत में दोनों स्थानों पर हमेशा आचार्य यही कहते हैं आर्षा विरोधेन, यानी आगम से विरोध न पड़े ऐसा अर्थ निकालो और आगम से विरोध न पड़े ऐसा आचरण करो। तो अगर साधु दीपक का त्याग करते हैं तो वो आगम विरुद्ध त्याग होता है, और साधु के 46 दोषों में जो एक उल्लेख आता है कि चौके को प्रकाशित करना एक दोष है, प्राविष्कार नाम का दोष है, उसको प्रादुष्कार भी बोलते हैं। उस दोष के अंतर्गत क्या दोष होता है? बोले कि साधु चौके में है और चौके को आप प्रकाशित कर रहे हो, तो चौके को प्रकाशित करना दोष है, लेकिन पूजा करना चौके को प्रकाशित करने के लिए नहीं किया जाता। जो पूजा में जो दीपक होता है, कल्पना करो आप, पूजा में जो थाली में जो दीपक है क्या वो चौके में उजाला करने के लिए दीपक है? प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य मूलाचार में कह रहे हैं कि चौके में उजाला करने के लिए जो भी प्रकाश करोगे आप वो दोष है, तो उसका त्याग करो आप, साधु उसके त्यागी होंगे, लेकिन जो पूजा की थाल में दीपक है वो चौके को प्रकाशित करने के उद्देश्य से नहीं है, वो साधु की अर्चना करने के लिए है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जो आर्षा विरोधी अर्थ है उसी को ग्रहण करना है। भोजन दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, ऐसे 4 दान के भेद यहां दिए हुए हैं। दान की महिमा आदि सब कुछ बताया इसमें। अभी अपन ने जो जितना सुना है उसमें एक बात और जोड़ लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें वसुनंदी श्रावकाचार में और भी गाथाएं आई है कुछ जो इसमें अभी नहीं दी है। इसमें नवोपचार विधि संबंधी एक एक गाथा दी है। अब अपन एक गाथा और देख लेते हैं, यद्यपि वो मूल गाथा में था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में वो विषय, पर यहां पर फिर से अपन देख लेते हैं। असणम पाणम खैमम सायमिति चौव्यहो वराहारो पुवुत्तृणव विहाणी हितिविह पत्तस्य दायव्यो। अशन पान खाद्य स्वाद्य, इस तरह चार प्रकार का जो उत्तम आहार है वो पूर्वोक्त नौ विधियों से, पूर्वोक्त नौ अनुष्ठानों से तिविह पत्तस्य दायव्यो, तीनों प्रकार के पात्र के लिए देना है। तो इतने सारे रेफरेंसेस, इतने सारे संदर्भ उद्धरणों के माध्यम से ये बात अपन समझ सकते हैं कि पूर्वाचार्यों ने तीनों पात्रों के लिए नवोपचार विधि बताई है। इस पर अभी धर्मस्थल में आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के संग में पूज्य मुनिवर अपूर्व सागर महाराज श्री है, उनसे हमारी चर्चा हुई। हमने ये प्रश्न पूछा कि तीन पात्रों में अविरत सम्यक दृष्टि को भी लिया है, वीरता विरत को भी लिया है, मान लो दूसरी प्रतिमाधारी कोई अतिथि संविभाग व्रती है, शिक्षा व्रत का धारी है दूसरी प्रतिमा में, पहली प्रतिमा में तो अणुव्रत है, दूसरी प्रतिमा में गुणव्रत और शिक्षा व्रत भी है, तो पहली प्रतिमाधारी वीरता विरत है, वो दूसरी प्रतिमाधारी इसकी नवोपचार विधि कैसे करेगा पहली प्रतिमाधारी की, ये प्रश्न हमने पूछा था। अथवा कोई अविरत सम्यक दृष्टि है उसकी नवोपचार विधि ये ऊपर दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक कैसे करेगा, ये प्रश्न पूछा था। तो अभी इसको अपन प्रश्न के ही रूप में रहने देते हैं, इसका समाधान अपन फिर देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।